एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
अमेरिकन ड्रीम, ये शब्द सुनते ही एक सपना आंखों के सामने आता है।
हाँ, कि अगर आप मेहनत करें, सही रास्ते पर चलें, तो एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं।
हम सब ने यह सपना किसी न किसी रूप में देखा है, पर क्या हो अगर आप सब कुछ बिल्कुल सही करें और फिर भी आपकी दुनिया बिखर जाए।
आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने वाले हैं,
और ये कहानी हमें सुना रहे हैं 20वीं सदी के एक बहुत ही, कह सकते हैं, बेबाक लेखक फिलिप रॉथ
जी, और उनका पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यास अमेरिकन पेस्टोरल। ये उपन्यास 1997 में आया और ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि उस अमेरिकन ड्रीम का एक तरह से पोस्टमार्टम है।
लेकिन इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प पेच है। ये कहानी हमें सीधे तौर पर नहीं मिलती।
नहीं,
इसे हम तक पहुंचा रहा है एक कथावाचक, नेथन जुकरमैन, जो फिलिप रॉथ के कई उपन्यासों में नजर आता है।
बिल्कुल, वो इस कहानी को टुकड़ों में जोड़ रहा है, कुछ सुनी सुनाई बातों से, कुछ यादों से,
और बहुत कुछ अपनी कल्पना से। तो सवाल ये उठता है कि हम जो सुनने जा रहे हैं वो हकीकत है या एक दर्दनाक सपना जिसे दोबारा याद किया जा रहा है।
और यही यही रॉथ की खूबी है। वो हमें एक आदर्श हीरो की कहानी नहीं, बल्कि एक आदर्श हीरो की कहानी की याद दे रहे हैं। इसी धुंधलके में कहानी का असली जादू छिपा है।
तो चलिए इस याद के केंद्र में मौजूद उस किरदार से मिलते हैं, सीमूर स्वीड लेवोव।
स्वीड लेवोव, नाम सुनते ही एक सुनहरी तस्वीर आती है ना?
बिल्कुल, अपने स्कूल का सबसे बड़ा एथलीट, खूबसूरत, कामयाब, एक ऐसा इंसान जिसे देखकर लगे कि किस्मत उसी के लिए बनी है।
उसने अपने पिता के दस्ताने बनाने के कामयाब बिजनेस को संभाला और उसे नई ऊंचाइयों पर ले गया।
और देखिए, विडंबना यहीं से शुरू हो जाती है।
हाँ,
उसका बिजनेस था दस्ताने बनाने का। दस्ताने हाथों को दुनिया की गंदगी और चोट से बचाते हैं।
सही बात है, स्वेड ने पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन दस्ताने बनाए, लेकिन वो अपने ही परिवार को, अपनी ही बेटी को जिंदगी की चोट से बचाने वाला कोई दस्ताना नहीं बना सका।
उसने एक पूर्व मिस न्यू जर्सी डॉन ड्वायर से शादी की और शहर के शोर शराबे से दूर न्यू जर्सी के एक शांत ग्रामीण इलाके में एक पुराना पत्थर का घर खरीद लिया।
अपनी एक आदर्श दुनिया गढ़ ली थी उसने।
जी,
इसी को रॉथ पेस्टोरल कहते हैं। पेस्टोरल का मतलब है गांव की शांत, सुकून भरी जिंदगी, जैसे किसी पुरानी पेंटिंग में होता है।
हरे भरे खेत, शांत नदियां, सब कुछ अपनी जगह पर।
हाँ, स्वेड ने यही पेंटिंग अपनी असल जिंदगी में बनाने की कोशिश की थी। उसे लगा कि उसने इतिहास के शोर और दुनिया की अराजकता से खुद को दूर कर लिया है, एक महफूज किला बना लिया है।
लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उस पेंटिंग के फ्रेम के ठीक बाहर एक तूफान इंतजार कर रहा था।
और वो तूफान बाहर से नहीं, बल्कि उसके अपने घर के अंदर से उठने वाला था।
साल था 1968।
अमेरिका वियतनाम युद्ध की आग में जल रहा था। देश भर में नौजवान सड़कों पर थे अपनी ही सरकार के खिलाफ।
और इसी सियासी उबाल के बीच स्वीड की 16 साल की प्यारी बेटी मेरिडिथ मेरी
अपने ही कस्बे के एक डाक घर में बम रख देती है।
ये बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। एक धमाका होता है, एक बेगुनाह डॉक्टर मारा जाता है और एक पल में सब कुछ बदल जाता है।
मेरी घर से भाग जाती है, एक घरेलू आतंकवादी और भगोड़ी बन जाती है, और स्वीट की वो खूबसूरत पेंटिंग
हमेशा के लिए जलकर राख हो जाती है।
और यही उपन्यास का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ऐसा हुआ कैसे?
इस जन्नत से ये जहन्नम कैसे पैदा हुआ?
इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें किरदारों के दिमाग में उतरना होगा। सबसे पहले स्वीट।
वो एक ऐसा इंसान है जो व्यवस्था, मेहनत और शालीनता में यकीन करता है। उसका मानना था कि अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और मेरी के इस कदम ने उसके इस यकीन की नींव ही हिला दी।
पूरी तरह से उसकी बाकी की जिंदगी बस एक दर्दनाक खोज बन जाती है, अपनी बेटी को खोजने की और उससे भी ज्यादा उस क्यों का जवाब खोजने की
जो उसे कभी नहीं मिलता।
कभी नहीं,
वो अमेरिकी सफलता का प्रतीक था, लेकिन अंदर से वो एक ऐसे खोखले इंसान में बदल गया जो अपने ही दुख के मलबे में अकेला खड़ा है।
और इस मलबे की वजह है मेरिडिथ लेवोव। वो कहानी का रहस्यमयी केंद्र है।
बचपन से उससे हकलाने की समस्या थी, जो शायद इस बात का इशारा था कि वो दुनिया से ठीक से जुड़ नहीं पा रही,
अपनी आवाज नहीं खोज पा रही।
बिल्कुल।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्वीडी की व्यवस्था बनाने की जिद ही उस अराजकता की वजह बनी? क्या उसका आदर्श जीवन इतना घुटन भरा था कि मेरिडिथ के पास फटने के अलावा कोई चारा नहीं था?
ये ये उपन्यास का सबसे मुश्किल सवाल है। रॉथ हमें दिखाते हैं कि व्यवस्था और अराजकता दो अलग अलग चीजें नहीं हैं।
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल। मेरी की व्यक्तिगत पीड़ा यानी उसका हकलाना, वो 1960 के दशक के राजनीतिक गुस्से के साथ जाकर मिल गया। उसे लगा कि जो अन्याय उसके साथ हो रहा है वही अन्याय अमेरिका पूरी दुनिया के साथ कर रहा है।
तो उसका आतंकवाद शायद उसकी अपनी आवाज खोजने का एक भयानक और विकृत तरीका था।
हाँ, कह सकते हैं। और फिर परिवार का तीसरा कोना, स्वीड की पत्नी डॉन,
एक ब्यूटी क्वीन जिसकी पहचान हमेशा उसकी खूबसूरती पर टिकी रही। इस हादसे ने उससे तोड़ कर रख दिया।
उसका नर्वस ब्रेकडाउन होता है और जब वो ठीक होती है तो वो एक अलग ही इंसान होती है।
हाँ, वो उस ट्रेजेडी का सामना करने का एक अलग रास्ता चुनती है।
वो अपनी बाहरी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेती है और एक पड़ोसी के साथ रिश्ता बना लेती है। वो अतीत को दफना कर आगे बढ़ना चाहती है।
एक तरह से वो उस बिना शर्त के प्यार को त्याग देती है जो स्वीट को जिंदगी भर तड़पाता रहता है।
वो आत्मसंरक्षण को चुनती है।
लेकिन क्या ये वाकई आत्मसंरक्षण है या एक तरह का पलायन?
बिल्कुल। स्वीट अपनी बेटी को खोजने की पीड़ा झेल रहा है और डॉन उस पीड़ा से ही भाग रही है।
दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए भी मीलों दूर हो जाते हैं।
कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तब आता है जब बमबारी के 5 साल बाद स्वीड आखिरकार मैरी को ढूंढ निकालता है।
वो उसे न्यूयॉर्क शहर के एक जर्जर तबाह हो चुके इलाके में पाता है।
मगर जो मैरी उसे मिलती है वो उसकी बेटी नहीं है।
ये बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। एक पिता सालों बाद अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढे और वो उसे ऐसी हालत में मिले कि उसे पहचान तो सकती है पर उससे कोई रिश्ता नहीं महसूस कर सकती।
इससे बुरा क्या हो सकता है?
कुछ नहीं।
वो अब कोई राजनीतिक क्रांतिकारी नहीं है बल्कि जैन धर्म की एक अतिवादी अनुयायी बन चुकी है, बेहद दुबली पतली, गंदी और भावनाओं से पूरी तरह खाली।
वो अपने चेहरे पर एक जाली पहनती है ताकि वो किसी छोटे से छोटे कीड़े को भी सांस के जरिए मारकर हिंसा ना कर दे।
और उसी मुलाकात में वो इकबाल करती है कि उसने एक नहीं बल्कि 4 बम धमाके किए थे जिनमें कुल 4 लोग मारे गए।
ये तो शांति की तलाश नहीं, ये एक और तरह की कैद है।
बिल्कुल। पहले वो राजनीतिक विचारधारा की कैदी थी, अब वो एक धार्मिक अतिवाद की कैदी है।
स्वीर उसे घर वापस लाने गया था लेकिन उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी अब हमेशा के लिए खो चुकी है,
एक ऐसी दुनिया में जहां उसके प्यार की कोई पहुंच नहीं है।
कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो 1973 में लेवोव के घर पर हुई एक डिनर पार्टी में आता है।
हाँ, उस वक्त तक स्वीड को अपनी पत्नी के अफेयर और अपने पिता के कैंसर के बारे में पता चल चुका है।
वो मेहमानों से घिरे होने के बावजूद दुनिया में सबसे अकेला इंसान है। वो एक अच्छा मेजबान होने का नाटक कर रहा है, सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा है।
और शायद उसी पल उसे ये भयानक एहसास होता है कि अराजकता वियतनाम से या प्रदर्शनकारियों से नहीं आई थी,
वो हमेशा से वही थी।
हाँ, उसके खूबसूरत घर की दीवारों के अंदर, उसके आदर्श परिवार के रिश्तों में और शायद खुद अमेरिका की आत्मा में।
वो जिस पास्टोरल दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा था
वो शायद कभी थी ही नहीं, वो बस एक भ्रम था।
सही का। ये उपन्यास हमें दिखाता है कि अमेरिकी सपना एक बहुत नाजुक, बहुत ही खोखला भ्रम है।
स्वीट ने समाज के हर नियम का पालन किया। वो एक अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा पिता, अच्छा नागरिक था, फिर भी उसकी दुनिया उजड़ गई।
रॉथ ये दिखा रहे हैं कि आप इतिहास की बड़ी ताकतों से खुद को नहीं बचा सकते।
बिल्कुल। 1960 के दशक की लहर इतनी तेज थी कि उसने स्वीट जैसे मजबूत इंसान के बनाए किले को भी बहा दिया।
और इसमें पीढ़ियों का संघर्ष भी साफ दिखता है। एक पीढ़ी जो स्थिरता और सफलता चाहती थी
और दूसरी पीढ़ी जो उस स्थिरता के पीछे छुपे पाखंड और अन्याय को तबाह कर देना चाहती थी।
माता पिता और बच्चों के बीच एक ऐसी खाई बन गई थी जिसे कोई प्यार नहीं भर सकता था।
अंत में ये कहानी हमें जकमैन के नजरिए से मिलती है जो स्वीट के मरने के बाद उसकी कहानी को समझने की कोशिश कर रहा है और वो सोचता है कि हम किसी दूसरे इंसान को कभी भी पूरी तरह नहीं जान सकते।
हम सब दूसरों के बारे में कहानियां घड़ते हैं और शायद स्वीट की ये आदर्श छवि भी एक कहानी ही थी जिसे सब सच मान बैठे थे, खुद स्वीट भी।
तो ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे इतिहास की बड़ी और हिंसक लहरें व्यक्तिगत जीवन के शांत तालाब को भी तहस नहस कर सकती हैं।
और ये भी कि आदर्श जीवन का भ्रम कितना नाजुक होता है और हम जिन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें भी शायद ही कभी पूरी तरह समझ पाते हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।